नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरीं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय चैतन्य महाप्रभु की। आज हम लोग पाठ का स्मरण करेंगे आदि लीला अध्याय दो श्लोक संख्या 26। ज्ञान जोगो मार्गे तारे भजे जे ईशा ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव ज्ञान जोगो मार्गे तारे भजे जे ईशा ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव ज्ञान जोगो मार्गे तारे भजे जे ईशा ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। ज्ञान जोगो मार्गे तारे भजे जे ईशा ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। ज्ञान जोगो मार्गे तारे भजे जे ईशा ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। ज्ञान जोगो मार्गे तारे भजे जे ईशा ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। माताए ज्ञान जोग मार्गे तारे भजे जे ईशव ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। ज्ञान जोग मार्गे तारे भजे जे ईशव ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। ज्ञान जोग मार्गे तारे भजे जे ईशा ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे। श्रील प्रभुपाद की तो शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद की। ज्ञान दार्शनिक चिंतन के योग और गूढ़ जोग के मार्गे मार्ग पर तारे उनकी भजे पूजा करते हैं। यही यो सब सब ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म के आत्मा और परमात्मा के रूपे रूपों में तारे उन्हें करे करते हैं, अनुभव देखते हैं व अनुभव करते हैं। अनुवाद, जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्ग पर चलते हैं ये भगवान ही की पूजा करते हैं, क्योंकि ये निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्जामी परमात्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। अगले कृपा के बोलिए, जो लोग ज्ञान तथा योग मार्गों पर चलते हैं ये भगवान ही की पूजा करते हैं, क्योंकि ये निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्जामी आत्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। चलो तात्पर्य, जो लोग परम सत्य की खोज करते हैं, खोज करने के लिए मानसिक तर्क वितर्क ज्ञान मार्ग में आसक्त है और योग में स्थित होकर ध्यान करना चाहते हैं, वे क्रमशः भगवान के निर्विशेष तेज तथा उनके अंश परमात्मा के पास पहुँचते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के शाश्वत रूप का अनुभव नहीं कर सकते। जय श्री प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखानितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मञ्चाकल्पतरुभश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्ध दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तविन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिर्यै मा पुरो विभो निर्मायसे ते जदमूषु पुरुष मुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कि शिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोलंकृशिष्ट भगवान बचांसि में। हरे कृष्ण। आज हम लोग पाठ का श्रवण करें चैतन्य चैतन्यमित अध्याय का नाम क्या है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। इस अध्याय में কৃষ্ণনাথ কুমার গোস্বামী চৈতন্য মহাপ্রভুকে যে ভগবত তত্ত্ব কা নিরূপণ কিয়া হে, যে চৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং ব্রজরাজ নন্দ মহারাজকে পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হে, ইস অর্থাৎ ইসকো স্থাপিত কিয়া হে, যে চৈতন্য গোসাই রে তত্ত্ব নিরূপণ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন, যে ব্রহ্মাকে এক দিন হতা হে 432 কোটি বছর, আর রাত্রি ভি সমপ্রাণ হতা হে, আর ব্রহ্মা কা এক দিন মে 14 মনু রাজত্ব করতে হে, সুতরাং মালুম হে যে স্বয়ম্ভু সরচিস উত্তম তামস রৈবত মানে চাক্ষুষ বৈবসত সাবর্ণী ব্রহ্মসাবর্ণ ইসুকে পুরা আতে হে 14 মনু, এই 14 মনু কা রাজত্বকাল হতে 71 চতুর্যুগ, আর 70 তেতা দাপর কলি এ 4 যুগ মিলকে 1 চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ হতা হে। শুভকার যে সপ্তম মন্মন্তর যে বৈবসত মন্মন্তর যে 28তম চতুর্যুগ যে আবি যে চল রে, ইস চতুর্যুগ মে দাপর কে অন্ত মে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হতা হে, আর ইসকা বাদে ঠিক কলি কে যুগ সন্ধ্যা মে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকট হতা হে। হ্যালো, তাহলে ক্যা সমজ মায়া, যে ব্রহ্মা কা এক দিন মে ইয়া বল সকতে যে 14 মনু কা রাজত্বকাল মে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং চৈতন্য মহাপ্রভু একবার প্রকট হতা হে, তার ব্রহ্মা কা তাহলে অর্থ কি যে দিন রাত, ব্রহ্মা কা 12 ঘন্টা মে এক দিন এবং 12 ঘন্টা মে এক রাত্রি, মানে 432 864 কোটি বছরকে বাদ একবার কৃষ্ণ আতে এবং শ্রীকৃষ্ণ আতে হে, তো ব্রহ্মা কা এক দিন মে অর্থাৎ বৈবসত মন্মন্তরকে 28ম চতুর্যুগ মে মানে 197,53,20,000 বৎসর বীত জনকে বাদ ব্রহ্মাকে একদিন কা তব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হতা হে, আর উসিকে বাদ ঠিক বাদই কলিকে যুগ সন্ধ্যা মে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকট হতা হে। হামলোক সব মালুম হে ভগবানকে বাতা যাতে ত্রিযুগ, কারণ কে 70 তেতা দাপর কলি দাপর 3 যুগ মে ভগবান আতে, কলিযুগ মে তো মহাপ্রভু আয়ে হে, কি ইসকো নাই বলা যাতে, কিউকি কলি চৈতন্য মহাপ্রভু কই যুগ মে নাই আয়, যুগ সন্ধ্যা মে আতে, জেসে হামলোক আসেন সমাজ দেখতে যে হিরণ্যকশিপু কো ভগবান কব মারেতে না সন্ধ্যা কা সময়, কিউকি উনোনে বর মাঙ্গেতে ভগবান সে মে না দিন মে মরুঙ্গা না রাত মে মরুঙ্গা, তো ইসলে ভগবান ব্রহ্মা কা বাদ রাখতে হুয়ে হিরণ্যকশিপু কব মারেতে না সন্ধ্যা কা সময়, সন্ধ্যা কা ভি না দিন হতা না রাত হতা, উসি প্রকার যে যুগ সন্ধ্যা যে যুগ কা ও কই যুগ কা আন্দার নাই আতে হে, ইসলে বহুপাল আছে সব সামঝাতে হে যে যুগ সন্ধ্যা কে হতা হে, যে এক যুগ কো 12 ভাগ মে ভাগ কে যাতে হে, এই পেহলা ভাগ কো বলতে প্রথম সন্ধ্যা, এই প্রথম সন্ধ্যা আর পিছলে যুগ কা অন্তিম সন্ধ্যা মিলকে দোনো যুগ কা সন্ধি নির্মাণ করতে হে, ইসকো বলতে সন্ধিকাল, ইসে কলিযুগ আর সৌর্য সিদ্ধান্তকে অনুসার যে কলিযুগ কা যে প্রথম সন্ধ্যা হতা হে 36,000 সৌর বছর তক রাতে হে, সূর্য সিদ্ধান্তকে অনুসার কলিযুগ কা যে সন্ধ্যা কা সময়সীমা হতে 36,000 সৌর বছর তক, আর চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকট হইতে যব মাত্র 4,586 সৌর বছর বীত চুকেতে, মানে একদম বিলকুল পেহলে যুগ সন্ধ্যা কা 36,000 সৌর বছর তক এই কলিযুগ কা যুগ সন্ধ্যা চলেগা, আর চৈতন্য প্রকট হইতে উসি সময় এই সৌর বছর কা মানে সন্ধ্যা কা কত সময় বীত চুকা হে মাত্র অনলি 4,586 সৌর বছর, মানে বিলকুল পেহলেই মানে সন্ধ্যা কা পেহলেই, চৈতন্য মহাপ্রভু 1407 শতাব্দ মে নবদ্বীপ ধামে মায়াপুর নামক স্থান মে পৌর্ণমাসী কে দিন সন্ধ্যা কা সময় প্রকট হয়ে থে, উসি সময় চন্দ্রগ্রহণ ভি থা, আর চৈতন্য মহাপ্রভু অপ্রকট কব হয়ে থে না 1455 শতাব্দ মে সিধাম পুরীধাম মে নীলাচল শিখর পুরীধাম মে, তাহলে মহাপ্রভু টোটাল 48 বছর এ ধরাধাম মে প্রকট লীলা কিয়ে হে, আর চৈতন্য মহাপ্রভু যব 1431 শতাব্দ মাঘ মাইনা কা 25শে মাঘ যক রাত্রি কা চারদণ্ড রতে হুয়ে আপনার গৃহ ত্যাগ কিয়ে থে সন্ন্যাস লেনে গেলে, কিন্তু মহাপ্রভু কা 38 বছর মে 24 বছর গৃহস্থ লীলা আর 24 সন্ন্যাস লীলা কিয়ে থে, আর 3 দিন কা বাদ হি মানে কি হওয়া যে सत्ताईस को गिरोह किए थे, 29 से माघ माने मासकाल माघ माने के लास्ट दिन में संध्या का समय, इसमें संध्या का समय, संध्या का थोड़े देर बाद ही चैतन्य को संन्यास ग्रहण किए थे। चैतन्य का प्राकट्य भी संध्या का समय आज संन्यास ग्रहण भी किया संध्या का समय, ऐसे पूरा संयोग होता है। आज चले हम लोग कैसे 1455 में महाप्रभु ये धौराधाम में अप्रकट हुए हैं, और महाप्रभु का अप्रकट होने का लगभग 75 वर्षों के बाद ये चैतन्य चैतन्य ग्रंथ रचना प्रारंभ हुआ। और इसके बाद लगभग 7-8 वर्षों के बाद ये चैतन्य चैतन्यमृत ग्रंथ संपूर्ण हुआ है। कृष्णदास कुमार गोस्वामी, देखिए अभी श्लोक आया है, कृष्ण गोस्वामी स्वयं बताते हैं जे सा के सिंधुग्नि बानेन्द्यो चैत्री वृंदावनांतरी सूर्यजन्यासीति पंचम्याम ग्रंथयम पूर्णताम गतः। कृष्ण गोस्वामी स्वयं अपना ग्रंथ का बिल्कुल लास्ट श्लोक है बताते हैं जे साके सिंधुग्नि बानेन्दो, साक में शकाब्दे सिंधु अग्नि बानेन्दो मान 1537 अब मालूम ये इसका माने कवि का कवित्व से लिखा है, इसको समझना पड़ेगा। सिंधु माने क्या, जे सात, अग्नि, अग्नि का अर्थ क्या तीन, सिंधु सात समुद्र मालूम है जे लवण समुद्र सुरा समुद्र सात समुद्र, ये बचपन पढ़ाई करते थे, एक चंद्र दुए पक्ष तीने नित्र चारी वेद, इस बचपन हम लोग याद करने के लिए इसे पढ़ाई करते थे, वो अभी पढ़ाई अभी काम में आएगा। सिंधु का अर्थ क्या सात, अग्नि माने तीन, बान माने पंच बान, जे कामदेव का पांच बान पंच बान, और इंदु माने क्या चंद्रमा, चंद्रमा एक होता है, तार कहते सात से अग्नि माने तीन और बान माने पांच और इंदु माने एक। ये जो इसका गणना इस राशि गण हिसाब से किया है कृष्ण गोस्वामी, जे राशि का गणना होता है अंकश्य बामा गति, हम लोग क्या डान दिक से लिखते हैं लेकिन राशि गणना बाम दिक से होता है, पहला अक्षर लिख के इसका बाम दिख से लिखने से जी अक्षर होता है वो राशि गौने के जाते हैं। तले क्या सिंधु, तले पहले सात लिख दीजिए, इसके बाद क्या इंदु माने तीन, तीन बाया तरफ लिखिए, अब अग्नि ना अग्नि तीन और बान पांच और इंदु एक, 1537 हुआ 7-3-5-1 1537 हैं 1537, ये थोड़ा सा समझने का बाद है, ये होते ज्योतिष गणना हिसाब से इसका जिस सिंधु साके सिंधोग्नि बानेन्दो माने साके शकाब्दे सिंधोग्नि बानेन्दो माने कहते 1537 शकाब्दे में ज्येष्ठ माने ज्येष्ठ महीने में वृंदावनांतरे वृंदावन में सूर्य अन्य माने रविवार अशीति पंचम्यम माने कृष्ण पक्ष का पंचमी अयम ग्रंथ पूर्ण ये ग्रंथ संपूर्ण हुआ। माने कृष्ण गोस्वामी स्वयं बताते हैं जे 1537 शकाब्द में ज्येष्ठ मास में वृंदावन धाम में रविवार और कृष्ण पंचमी तिथि में ये ग्रंथ संपूर्ण हुआ है। और ये ग्रंथ का संपूर्ण करने का साथ साथ शिल प्रभुपाद का जो चैतन्य ग्रंथ का बहुत मेल खाते अंत का, इसलिए जो बताया जे शिल प्रभुपाद जो चैतन्य ग्रंथ जो रचना किए है, शिल प्रभुपाद भी जब ग्रंथ का समाप्त किया है, प्रभुपाद समाप्त किया 10 नवंबर 1974 ख्रीष्टाब्द में, अर्थात 10 कार्तिक 1488 बंगाब्द में कृष्ण पक्ष के रमा एकादशी का दिन रविवार, इसलिए प्रभुपाद भी रविवार और कृष्ण पक्ष में खत्म किया है। मैं इसलिए ढूंढा इसको, मैं सोचा जे हमारा ये मंदिर में सोमवार क्यों चैतन्य तो ग्रंथ अध्ययन होता है, कुछ तो शास्त्रीय कारण होगा है, अथो जो लोग भाला है सोमवार किया है लेकिन कुछ शास्त्रीय कारण होगा, इसलिए मैं ढूंढते ढूंढते मिल गए जो रविवार ये ग्रंथ किसों को खत्म किए है, इसलिए प्रभुपाद भी खत्म किए है, खत्म होने के बाद ही शुरू होता है ना सोमवार से, इसलिए शुरू हुआ। एक विशेष एक महात्म है इसका, से चैतन्य महाप्रभु बा चैतन्य ग्रंथ स्वयं हम लोग अथॉरिटी में मन में दिए है जी आप लोग सोमवार कीजिए, कारण क्या रविवार मेरा खत्म हुआ है, इसलिए सोमवार से पठन पठन होगा इस हिसाब में। और कृष्णनाथ कुमार गोस्वामी जो ग्रंथ रचना किया है ये चैतन्य चैतन्यमृत, कृष्णनाथ कुमार गोस्वामी का रचना का पहले भी जे सब लेखकगण ने चैतन्यमृत ग्रंथ रचना किया है उसमें तीन जन विशेष प्रसिद्धि लाभ किया है, जे मुरारी गुप्त, कवि कर्णापुर और वृंदावन दास ठाकुर। मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ग्रंथ रचना किया है श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृतम, ये ग्रंथ पूरा संस्कृत भाषा में है और बिल्कुल संक्षेप में है, लगभग सारी सूत्र आकार में है, इसलिए इसको बोलता है कि कर्चा, मुरारी गुप्त का कर्चा नाम में प्रसिद्ध है। और कवि कर्णपुर, कवि कर्णपुर है चैतन्य महाप्रभु का जो प्रिय पार्श्व शिवानंद सेन, इसका कनिष्ठ पुत्र, इसका मेन नाम है परमानंदपुरी, परमानंद सेन, लेकिन इसको कर्णपुर उपाधि दिया गया है, इसलिए इसको कवि कर्ण बताया जाता है। इन्हें चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के ऊपर दो ग्रंथ रचना किया है, एक है श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य महाकाव्यम और श्री श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक। ये दो ग्रंथ भी पूरा संस्कृत भाषा में है और लगभग इसका मुरारी गुप्त का कर्चा के ऊपर आधारित है और कुछ मूल नूतन विषय भी मिलता है। और तीसरा वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर बंगाली भाषा में पैरादी छंद में चैतन्य भागवत रचना किया है। ये वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत पहले दोनों का अपेक्षा में बहुत प्रसिद्धि लाभ किए थे। कारण ये है ना, ये ग्रंथ बंगाली भाषा में है प्रथम तो, इसलिए सर्वसाधारण इसको पढ़ के हृदयंगम कर सकते हैं। और द्वितीयत तो है ये ग्रंथ अत्यंत सहज सरल एवं मधुर भाषा में चैतन्य महाप्रभु के लीला वर्णन है चैतन्य भागवत में, एवं इसमें भक्ति आदि महात्म अधिक वर्णन है, इसलिए तत्कालीन समय में सारी गौड़ीय वैष्णवगण ये चैतन्य भागवत को ही ज़्यादा ही पठन पठन करते थे। चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण या पार्षदगण अपने अवसर समय में चैतन्य महाप्रभु के लीला आदि माने आलोचना करने को अपने समय का सदव्यवहार एवं भजन के अनुकूल उत्सव मानते थे। इसी कारण से वृंदावन वासी के भक्तगण भी हमेशा रोज शाम को चैतन्य भागवत अध्ययन करते थे। लेकिन चैतन्य भागवत में महाप्रभु का जो अंतिम लीला वर्णन नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा वर्णन है नहीं, लेकिन भक्तगण का बहुत लिप्स अभिलाष बहुत प्रकार है जो चैतन्य महाप्रभु का अंतिम लीला हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए सब भक्त मिल के कृष्णनाथ कुबेर गोस्वामी को अनुरोध किए जे आप ये चैतन्य महाप्रभु का जो अंतिम लीला वर्णन कीजिए। इसी से ही चैतन्य चैतन्यमृत ग्रंथ का रचना शुरुआत होता है इसी से ही। और कृष्णनाथ कबीर गोस्वामी को जो पहले जे जिसमें ग्रंथ लिखा है जे कवि कर्णपुर मुरारी गुप्त और वृंदावन दास ठाकुर या स्वरूप दामोदर ये लोग का जो उपादान जो ग्रंथ लिखा है वो लोग से कुछ तत्व लेने का इसका बहुत सुअवसर था। इसलिए कृष्णनाथ कबीर गोस्वामी स्वयं बताते हैं, आदि लीला मध्य प्रभुर जतेक चरित्र सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करी लागथित प्रभुर जे शेष लीला स्वरूप दामोदर सूत्र करी गथिलेन ग्रंथेर भितर से एई दुई जनार सूत्र देखिया सुनिया वर्णना करेन वैष्णव क्रमे जे करिया। माने कृष्ण गोस्वामी बताते हैं जे आदि लीला में जितना कुछ महाप्रभु का लीला वर्णन है ये सब मुरारी गुप्त आपने जे ग्रंथ कर्चा मुरारी गुप्त कर्चा इसमें सारी लिपिबद्ध है। और जे अंत शेष लीला का जितना वर्णन में किया हूँ ये स्वरूप दामोदर आपने ग्रंथ में सारी लिपिबद्ध किया है। ये दो जन का ग्रंथ को मैं देख के सुन के ये सारी ग्रंथ रचना किए हैं। और आगे ही बताते हैं जे चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूपेर भंडार तेह थुईला रघुनाथेर कंठे ताहा किछु जे सुनिलु ताहा इहा बिवरिलु भक्तगणे दिलु एई भेटे। बोले चैतन्य महाप्रभु का लीला है ये सारी रत्न का सार है, मुकुटमणि है। और ये सारी स्वरूप दामोदर गोस्वामी आपने ग्रंथ में सब लिपिबद्ध किया है। और स्वरूप दामोदर ये सारी लीला रघुनाथ दास गोस्वामी को सुनाया है। और रघुनाथ दास गोस्वामी जब वर्णन किए थे तब मैं भी सुना हूँ, मैंने मेरे को सुनाया है। और मैं जितना कुछ सुना हूँ वो सब भक्तों को उपहार स्वरूप मैं ग्रंथ में लिख के आप लोग को भेंट प्रदान कर रहा हूँ। माने कृष्ण गोस्वामी स्वरूप दामोदर का जो जो रघुनाथ गोस्वामी सुनाया है और रघुनाथ गोस्वामी जो कृष्ण गोस्वामी सुनाया है वो सब एक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। अपना मनगढ़ंत कुछ लिखा नहीं है, सब शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है। अरे चैतन्य चरितमृत का विशेषत्व किया है अन्य ग्रंथ से, क्योंकि चैतन्य चरितमृत में जीवन आख्यान के अपेक्षा दार्शनिक तत्व ज़्यादा आलोचित हुआ है। इसमें वैष्णव गौड़ीय वैष्णव धर्म के जो सारी मूलभूत सिद्धांत है सारी सिद्धांत ग्रंथ में समावेश हुआ है। ये ग्रंथ को सारी हमारा माने गोस्वामीगण का ग्रंथ का जो सार संक्षेप बोलने से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, इसमें सब सार इसमें दिया गया है। इसलिए ये जो अमूल्य ग्रंथ को गौड़ीय वैष्णव का निकट एक माने अपूर्व ग्रंथ एवं वेदवत मान्य है ये ग्रंथ, सब लोग इसको पढ़ते हैं एवं इसका बांग्ला साहित्य में एक अपूर्व इसका स्थान ग्रहण किया है। और ये ग्रंथ में जे ये दार्शनिक कवित्व के सहित दार्शनिक जे सिद्धांत तो स्थापित किया है इतना सहज सरल भाषा में अन्य कोई ग्रंथ में इसने दिखाई नहीं देते हैं। कवित्व के भी है और दार्शनिक तत्व तो एक साथ इतना अच्छा समावेश है, दूसरा ग्रंथ में इतना अच्छा से आपको दिखाई नहीं देगा। ये ग्रंथ का विशेष महात्म है, इसलिए ग्रंथ का बहुत माने महात्म है। और ये ग्रंथ का और एक विशेष महात्म है जे ये जे गौरलीला रसनिष्ठ ग्रंथ है, इसको जितना पठन पठन किया जाएगा आपका उतना और पढ़ने का इच्छा वर्धित होगा और उतना ही आप महाप्रभु का जो माधुर्य लीला आसन करने लगेंगे। तो कृष्ण कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी स्वयं बताते हैं, जेवा नाही बुझे कि ह सुनीते सुनीते से ह कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जानिबे रसेर रीति सुनिले हय बरहित। इस श्लोक को बहुपाद अच्छा समझाते हैं। बहुपाद बताते हैं यदि प्रारंभ में मैंने पहले अवस्था में किसी को चैतन्य पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको बार बार पढ़ते रहिए, श्रवण करते रहिए, इससे क्या होगा ना ये चैतन्य महाप्रभु लीला का कृपा से आपका हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा और आप धीरे धीरे कृष्ण को एवं गोपियों का एवं वृंदावन के अन्यान्य महा कृष्ण के पार्षद के माधुर्यमय लीला को आसन कर सकेंगे। इसलिए प्रभुपाद समझा रहे इसको, इसलिए प्रभुपाद बताते थे, इसलिए इसको पूरा लाभ उठाने के लिए सबको परामर्श दिया जाता है जी इसको बार बार श्रवण करे। इसलिए प्रभुपाद हम लोग को बता रहे हैं कि ये श्लोक का माने अनुवाद में जे बार बार इसको श्रवण करे, श्रवण करने से हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु का लीला का कृपा से पहले कुछ समझ में आएंगे, लीला का कृपा से हम लोग का हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा एवं हम लोग धीरे धीरे कृष्ण को एवं राधा रानी सारी गोपियों का एवं कृष्ण के अलग अलग पार्षद का जो माध्यम लीला हम लोग समझ में आएगा, नहीं तो हम लोग समझ में उतना आसान में आएगा नहीं। जो कोई बोल सकते चैतन्य तो बंगाली भाषा में बताया गया लेकिन पहले खुद से संस्कृत दिखाई देते हैं, जो मेरा भी क्षेत्र में पहले हुआ था, मेरा भाषा बंगाली है, मैं बोलता बहुत अच्छा ग्रंथ मैं पढ़ूंगा, जब पहले खोला जितना पेज पलटता हो देखा शुरू संस्कृत श्लोक ही है, मैंने बंद कर दिया, कुछ समझ में आया नहीं पहले, फिर बाद में जो समझ में आया तब तो मैं इसको पढ़ने लगा। किशोर को बताते हैं, भागवत श्लोक मय टीकातार संस्कृत है तबु कई छे बुझे त्रिभुवन इहा श्लोक दुई चारी ताहा व्याख्या भाषा करी केन नाही बुझे त्रिभुवन सर्वजन। किशोर को गोस्वामी बताते हैं श्रीमद भागवत जो ग्रंथ है ये तो पूरा संस्कृत भाषा में ही है और इसका टीका जितना गोस्वामी लोग किए हैं वो भी सारी संस्कृत में है, तो फिर भी सारा विश्व सारा जगत भागवत तो कैसे पठन पठन कर रहे कैसे समझ रहे। और मेरा एक ग्रंथ में थोड़ा सा ही दो चार संस्कृत में श्लोक दिया हूँ, फिर भी ये जितना श्लोक में लिखा हो संस्कृत में ये सारी श्लोक का बाद ही में बंगाली प्रयाद में बंगाली भाषा में प्रयादी छंद में सारी इसको व्याख्या कर दिया हूँ, तो क्यों नहीं सर्वजन समझ में आएगा, समझ में जरूर आएगा, पढ़ने समझ में आ जाएगा, आपका संस्कृत समझ नहीं आ रहे पढ़ते रहिए, बाद में इसको सारी बंगाली में समझा दिया है आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको धीरज रख के पढ़ना होगा, बार बार पढ़ने से इसको समझ में आ जाएगा। और ये जो ग्रंथ है इतना साधारण ग्रंथ नहीं, कोई बोल सकते एक बूढ़ा आदमी लिख दिए है क्या लिखा कोई कोनो गारंटी नहीं, लेकिन नहीं है, किसी को स्वयं बताते हैं, आमे विद्ध जरातुर लिखिते का पये करो मने किछु स्मरण ना है ना देखिए नयने ना सुनिए श्रवणे तबु लिखिए बड़ विस्मय। जे लेखक स्वयं बता रहे जिस समय उन्होंने ग्रंथ लिख रहा था क्या स्थिति था उनका, बोल रहे आमी विद्ध जरातुर मैं इतना बुढ़ापा आ गया माने जर्जर हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया हूँ, आ लिखिते कापे करो मैं जब लिखने जाता हूँ मेरा माने उंगली हिलता है हाथ हिलता है क्या लिखूंगा, और लिखने को तो स्मरण करना पड़ेगा ना, मेरा बुढ़ापा का कारण मेरा चित्त में कुछ स्मरण नहीं हो रहा है, और ना देखिए नयने मैं क्या लिखूँ, आग में कोई दिखाई नहीं दे रहे कि बुढ़ापा रहता हूँ जो भ्रू नीचे आ जाते हैं, उसका इतना उम्र हो गया था जे भ्रू नीचे आ गया वो ठीक से देख नहीं पाते हैं, तो लिखेगा कैसे है? और ना सुनिए श्रवणे, और कान कान का बधिर होता आगे, कोई कुछ बोलता मेरे को सुनाई नहीं देता है, फिर भी मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। इसमें कितना श्लोक है ना? 11,519 श्लोक है, इतना बड़ा ग्रंथ भागवत में 18,000, इसमें 11,000 इतने छोटी छोटी ग्रंथ नहीं है, 11,519 श्लोक, इतना बड़ा ग्रंथ इसी स्थिति में लिख दिया है। आग में दिखाई नहीं दे रहे, लिख नहीं पा रहे, स्मरण नहीं हो रहे कान में, फिर भी इतना ग्रंथ लिखा है। ये कैसे लिखा है? उन्होंने खुद लिखा है? नहीं है। जैसे हम जानते हैं जी बलदेव विद्याभूषण जी गोविंद भाष्य ग्रंथ लिखा है, आपने बोल से लिखा है? नहीं, गोविंद देव का कृपा से। जैसे शिल प्रभुपाद जितना ग्रंथ लिखा है, शिल प्रभुपाद खुद लिखा है। एक रिपोर्टर एक बार शिल प्रभुपाद को पूछा था, शिल प्रभुपाद आप क्या ग्रंथ खुद लिखे है? शिल प्रभुपाद बोले कृष्ण इज प्रॉम्प्टिंग आई एम राइटिंग, कृष्ण ने कहा है मैं लिखा हूँ। राइट को समझ क्या बात बोल रहे, कुछ समझ में आया नहीं। फिर प्रभुपाद बोला कृष्ण ने कहा है मैं लिखा हूँ। फिर राइटर के समझ क्या बता रहे प्रभुपाद। तब तमाल किशोर महाराज वो रिपोर्टर को समझना चाह रहे, नहीं नहीं मेरा गुरुमात ये बोलना चाह रहे, भगवान तो परमात्मा में सबका हृदय में है, परमात्मा रूप में हृदय में अनुप्रेरणा दिया प्रभुपाद लिखा है। प्रभुपाद बोले नो स्पेकुलेशन, कोई मंतव्य मत कीजिए, मैं बोला हूँ ना कृष्ण ने कहा है मैं लिखा हूँ। शिल प्रभुपाद बोलना चाह रहे ये ग्रंथ मैंने खुद नहीं लिखा हूँ। इसका प्रमाण क्या है? देखिए शिल प्रभुपाद कोई भी लेखक अपना ग्रंथ कभी नहीं पढ़ते हैं जो लिखते हैं, क्योंकि खुद लिखा सब जानते हैं क्या पढ़ेगा। लेकिन शिल प्रभुपाद अपना ग्रंथ बार बार पढ़ते थे एवं भक्त बोले आप पढ़िए, और शिल प्रभुपाद सुनते थे घंटों घंटों सुनते थे। सुन के प्रभुपाद अवाक हो जाते, इतना अच्छा ग्रंथ। जैसे हम लोग जितना वैदिक शास्त्र ग्रंथ हम लोग बोलते कौन लिखा है? व्यासदेव। व्यासदेव लिखा है? लिखा तो है गणेश। तो हम लोग क्यों बोलते हैं व्यासदेव लिखा है? क्योंकि जो बोलते हैं वही मेन होता है, जो लिखता है। जैसे नहीं, जैसे कोई ग्रंथ लिखा है ये इसको प्रिंटिंग कौन करते हैं? प्रेस करते हैं। कोई बोलता है जो प्रेस वाला ग्रंथ लिखा है? नहीं। उसी प्रकार जो मेन है, जिसे कृष्ण ने कहा है माने आज प्रभुपाद लिखा है, यही मेन है। उसी प्रकार ये जो ग्रंथ है चैतन्य चैतन्य ये कृष्ण को जो स्वामी अपना बस खुद नहीं लिखा है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको शक्ति दिया है ताकत दे, इसलिए इतना ग्रंथ लिख पाए। इसलिए ग्रंथों के मामूली नहीं है। एवं कृष्ण को जो स्वामी सारी जितना बंगाली भाषा में लिखा है उसका सारी प्रमाण दिया है, शास्त्र का प्रमाण दिया है। कोई प्रमाण छोड़ के खुद आपने लिखा नहीं, क्योंकि उन्हें जानते थे ये बंगाली भाषा में लिख रहा हूँ, कोई इसको प्रमाणिक कैसे समझेगा। इसलिए शास्त्रों से सब जगह में इसको समस्या कर दिया। इसलिए बताया ना ये सारी हमारा गौड़ीय सिद्धांतों का माने सार है। इसमें हमारा गौड़ीय में जितना सिद्धांत है सब ग्रंथों में है। कोई यदि यही एक ही ग्रंथ अच्छे से पढ़ेगा सारी सिद्धांत तो इसमें मिल जाएगी, सारी ग्रंथों का सार इसमें समावेश है। सिर्फ ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु परतत्व का निरूपित किया गया है। लेकिन जे अन्यान्य संप्रदाय में परतत्व का ऊपर विभिन्न मत है, अलग अलग मत है। इस सारी मत को खंडन करके चैतन्य महाप्रभु जे परतत्व इसको स्थापित करना एक बहुत कठिन व्यापार है, इतना आसान नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा होने से ये कार्य बहुत आसान हो जाते हैं। इसलिए ये अध्याय का प्रारंभ में कृष्णराज गौर गोस्वामी स्वयं माने चैतन्य महाप्रभु कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालयोपी जद अनुग्रहात् तरेन्नानामतग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। बोले श्री चैतन्य प्रभु वंदे, मैं चैतन्य महाप्रभु को वंदना करता प्रणाम करता प्रार्थना करता हूँ जे जत अनुग्रहात जिसके कृपा से जिसके अनुकंपा से जिसका अनुग्रह से बालयोपी एक अवध बालक भी जे नाना मत ग्राह व्याप्तम जे विभिन्न मद रूपी मगरमास स्वरूप ये समुद्र में सिद्धांत सागर को आसानी से पार कर जाते हैं। ये चैतन्य कृपा होने से ये सिद्धांतों को ठीक से समझ पाएगा, आज ये अलग अलग सिद्धांतों को लांग आसानी से कर पाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का लीला कीर्तन करने से उनका कृपा प्राप्त होता है, एवं कि उनका लीला का कृपा से ही हम लोग का हृदय में चैतन्य महाप्रभु का तत्व स्फुरित एवं अनुभूत होता है। लेकिन जीव अपने प्रयास से बा अपने चेष्टा से भगवान का नाम रूप गुण लीला स्मरण या उच्चित कर नहीं सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जियाद स्वयमेव स्फुरत तद। श्री कृष्ण के नाम रूप गिना, नाम रूप गुण लीला, ये कोई ये हम लोग का जोड़ियो इंद्र से हम उचित कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग जब उसका सेवा करने की इच्छा से मान उसका कीर्तन करने का जप करने की इच्छा करते हैं तो नाम कृपा करके हम लोग का जीह में स्फुरित होता है। हम लोग शक्ति नहीं है जो भगवान का नाम करने का, नाम कृपा कर हम जीह में निमित्त करते हैं व जीह में स्फुरित होता है। चलो हम लोग क्या समझा जी, जे लीलाई स्वयं कृपा करके हम लोग का हृदय में व जीह में स्फुरित होता है। इसलिए कृष्णपुर गोस्वामी जो तो हम लोग का जीह में हमेशा भगवान का लीला स्फुरित हो, नाम स्फुरित हो, इसलिए प्रार्थना किया है नाम नाम का भोग का ऊपर, लीला का ऊपर जी। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जो निभ्राजिता सद भक्ता बोली हंस चक्र मधुप सेनी विहारास्पदम चै कर्णानंदी कलध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मोरु प्रांगणे श्री चैतन्य दया निधे तब लसत लीला सुधा शरधुनी। लेखक बताते हैं जे हे दया के सागर, हे दया के निधि चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण विषयक जे संकीर्तन नाम लीला बा विभिन्न कला जे प्राथ जनि भाजिता जे पद्मफूल सदृश शोभावान सद भक्तावली शुद्ध भक्त के समूह सदृश हंस चक्रवाग मधुरगण का जो बिहार स्थान है और कर्णानंदी हमारा कौन कान में आनंद प्रदान करने वाला जे अस्फुट कल कल ध्वनि स्वरूप आपके जे उज्जवल रूप जे यहाँ लीला सुधा सरधुनी आपके उज्जवल लीला स्वरूप जे अमृत गंगा मे जिहा मरुपांगने मेरा जिहा रूप मरुभूमि में बहुत बहने दीजिए। जैसे मरुभूमि में कभी माने जल गिरने से सूख जाते हैं, लेकिन जब हमेशा कोई नदी प्रवाहित होगा तो वो सरस रहेगा। उसी प्रकार हम लोग का जे जड़ो जिहा ये वो सर माने सूखा हुआ है, इसमें भगवान का जब लीला हमेशा उच्चारित स्फुरित होगा तब हम लोग का इसका सरस होगा, तब हम लोग का भगवान की कृपा प्राप्त होगा, इसलिए प्रार्थना किया है। उसी प्रकार हम लोग भी चैतन्य पढ़ने का पहले ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए, तब हम लोग का हृदय में अपने आप ये लीला स्फुरित होगा, क्योंकि हम लोग का तो शक्ति नहीं है भगवान का नाम रूप गुण लीला कीर्तन करना स्मरण करना, उनका कृपा होने से हम लोग कर सकते हैं, इसलिए प्रार्थना ही मुख्य है। प्रार्थना करने से हम लोग का अपने आप लीला का कृपा से भगवान की कृपा से हृदय में स्फुरित होगा। इस अध्याय में ये मुख्य करके जे मंगल कृष्ण गोस्वामी सबसे पहले 14 मंगलाचरण किया है, ये मंगलाचरण का जो तीसरा मंगलाचरण है उसका ही माने व्याख्या है दूसरा अध्याय का संपूर्ण। ये तीसरा मंगलाचरण क्या था, जदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यश्यतनुभा आत्मांतरजामी पुरुष इति सत्संग वैभव शरैश्चर्य पूर्णय्य भगवान स स्वयमयम् न चैतन्नात् कृष्णाद जगति परतत्त्वम् परमिह। हम लोग इसका पहले सुन के आ रहा हूँ, हम लोग पहले भी सुने थे इसको अच्छा से, ये माने बताते उपनिषद में जिसको ब्रह्म कहते हैं ये कौन है, न चैतन्य महाप्रभु का अंगों का ज्योति है, प्रभा है, और जिसको परमात्मा कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु का अंश विभूति है, विलास है, और जिसको सरस्वप्न भगवान कहते हैं ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। इसका हम लोग व्याख्या सुन के आ रहे हो आज 26 नंबर श्लोक, जे पहला जे जिसको उपनिषद में ब्रह्म कहते हैं इसको व्याख्या कृष्ण गोस्वामी 12 श्लोक में किया है 6 से 17 नंबर श्लोक तक। इस बार जे जिसको परमात्मा कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का जे अंग विलास विभूति है ये कृष्ण गोस्वामी 5 श्लोक में समझा है 18 से 22 नंबर श्लोक तक। इसके बाद ये सरैश्वर्यपूर्ण जे नारायण है स्वयं चैतन्य महाप्रभु, इसको कृष्ण गोस्वामी 36 श्लोक में समझाते हैं, देखना 23 नंबर श्लोक से 58 नंबर श्लोक तक अभी जो हम लोग सीरीज चल रहे हैं, जे 23 नंबर श्लोक में बताते हैं जे परब्रह्मेत वैसे नारायण नाम सरैश्वर्यपूर्ण लक्ष्मी कांत भगवान। जे परब्रह्म जे महावैकुंठ जे कृष्ण अलावा भगवान के जितना सब भगवत स्वरूप है सबका अपना अपना नित्य एक धाम है, ये सारी धाम का समस्त क्या बोलते हैं ना, परब्रह्म। ये परब्रह्म का अधिपति कौन है ना, नारायण। वो कौन है ना, सर्वैश्वर्य पूर्ण। और इसका कांता कौन है ना, श्रीमती लक्ष्मी देवी। इस बार और इसका बात श्लोक बताते हैं, वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व जारे कहे नाही जार सम। बोले वेद में चारी वेद, श्रीमद भागवत उपनिषद, तापर अन्यान्य शास्त्र में जिसको परब्रह्म कहते हैं, इसके समान जगत में और कोई नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ। भक्ति जोगी भक्त पाए जहार दर्शन, सूर्य जन सविग्रहे देखे देवगण। मतलब भक्ति जोगे माने भक्ति जोग साधन में ने भगवान को सेव्य और स्वयं को सेवक मान करके जो साधक भगवान के सेवा का उद्देश्य में भजन करते हैं उसको क्या कहते हैं ना, भक्त कहते हैं। तो भक्त किसको कहते हैं ना, जो भगवान को सेव्य और स्वयं को सेवक मान करके भगवान के सेवा करने का उद्देश्य में जो भजन करते हैं उसको बोलते हैं भक्त। और उसका जो भक्त का जो साधन पद्धति, जो उपासना पद्धति, इसको क्या कहते हैं ना, भक्ति योग। तो भक्ति योगे भक्त पाए जहारा दर्शन, माने जिस सर्वैश्वर्य पूर्ण नारायण का जो दर्शन करते हैं, सूर्य जन सविग्रहे देखे देवगण। जिस प्रकार जो सूर्यलोकवासी वा सूर्यलोक का निकटवर्ती लोग में जितना देवता है, इस सूर्य को जे अपना जे कौर हाथ पैरों मैंने पूरा मूर्ति विशिष्ट दर्शन करते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, दूर से सूर्य को एक गोल हिसाब में मैंने सूर्य मैंने क्या ज्योतिष पिंड में देखता हूँ, सूर्य का जे हाथ पैरों आग मुख में देख नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग सूर्य लोग में निवास करते हैं या सूर्य का आसपास लोग में जो देवता निवास करते हैं, वो लोग सूर्य को साक्षात हम लोग का तो दर्शन करते हैं। उसी प्रकार जो लोग भक्ति योग में रहते हैं, भक्ति योग का साधन करते हैं, वो भक्ति का कृपा से भगवान का बहुत निकट में आकरीब आ जाते हैं। इसलिए भक्त भगवान को मैंने पूरा मैंने मूर्ति रूप में उन्हें हाथ पैरों विशिष्ट रूप में दर्शन करते हैं। क्यों दर्शन करते हैं, भगवान बहुत दूर है, लेकिन भक्ति का कृपा से भक्त भगवान को बहुत नजदीक हो जाते हैं। ये आज का श्लोक में क्या बताते हैं ना, ज्ञानो जोगो मार्गे तारे भजे जेई सब ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। बोलते ज्ञान मार्ग एवं योग मार्ग में, ज्ञानो जोगो मार्गे, ज्ञान मार्ग एवं योग मार्ग। ज्ञान मार्ग किसे कहते हैं ना, जो सब साधक भगवान के निर्विशेष ब्रह्म में ब्रह्म के साधु जो कामना करते हैं उसका जो उपासना पद्धति उसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग। और जे सब साधक परमात्मा का साथ संयोग कामना करते हैं उसका उपासना पद्धति बोलते हैं ना क्या ना, योग मार्ग। चले ज्ञान मार्गे योग मार्गे जो सब साधक उपासना करते हैं वो लोग क्या दर्शन करते हैं ना, भगवान का ब्रह्म रूप में ज्ञानी लोग और योगी लोग परमात्मा रूप में भगवान का अनुभव करते हैं। लेकिन वो दोनों ही योगी एवं ज्ञानी भगवान का जो सर्वैश्वर्य पूर्ण रूप का दर्शन कर नहीं पाते। स्वयं कृष्ण रूप का तो बात छोड़ दीजिए, जे पर्व में जो अधिपति जो नारायण सर्वैश्वर्य पूर्ण, इसका भी दर्शन कर नहीं पाते। और कृष्ण का बात तो दूर की बात है, कृष्ण का अनुभव करना और तो दूर की बात है। इसको हम आसने समझ सकते, पहले श्लोक में इसको सूर्य का उपमा देके समझाए हैं। हम लोग को व्यवहारिक एक अच्छा तरीका समझ सकते हैं, जैसे एक गोल चिपनी का अंदर कोई दिया जला के रखा है, जब दूर से हम लोग दिया के देखते हैं क्या देखता हूँ ना, ना चिपनी को देख पाता हूँ ना दिया को देख पाता हूँ। क्या देखता हूँ ना, एक गोल शुद्ध लाइट देखता हूँ। लेकिन जब हम लोग वो दिया का बहुत नजदीक करीब जाता हूँ तब हम लोग दिया बा चिपनी बा दिया का जो आधार बया दिया का जो सोलिता सब कुछ देख पाता हो। एवं शुद्ध इतना ही नहीं, जो दिया जो जल रहे जो लो जल रहे उसका अंदर जो काला एक रेखा होता वो भी देख पाता हूँ। उसी प्रकार जो कैसे हो रहा है ना, उसका स्थान का भेद से भिन्नता उस बाजे जो दिया एक ही है लेकिन लोग का अवस्थान का भित्ति का हिसाब से अलग अलग दर्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार भक्ति योग में भगवान, इसी प्रकार भगवान का अनुभूति भी ऐसे ही सेम है। जे ज्ञानी लोग बहुत भगवान दूर रहते हैं इसलिए वो लोग भगवान के एक ज्योति रूप में दर्शन करते हैं, योगी लोग परमात्मा रूप दर्शन करते हैं, और भक्त लोग भक्ति का प्रभाव से भगवान का बहुत करीब आ जाते हैं इसलिए भगवान को साक्षात दर्शन कर पूर्ण रूप दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि जो भक्ति है भगवान के अंतरंगा स्वरूप शक्ति का एक वित्ती विशेष है, इसलिए भक्ति का कृपा से ही भक्त लोग भगवान को पूर्ण रूप में जान सकते हैं। और जब पूर्ण में जान जाएगा स्वाभाविक से भगवान के पूर्ण में दर्शन कर पाएगा। इसलिए भक्ति योगी होते मेन है। कोई यदि भगवान के पूर्ण में जानना चाहते हैं इसका भक्ति का अवलंबन करना ही पड़ेगा, नहीं तो उपाय नहीं है। चले एक हम लोग का पाठ से आज क्या मैंने शिक्षा मिला इसमें, जे हम लोग का भगवान को पूर्ण रूप में जानने के लिए हम लोग का भक्ति योग का अवलंबन करना पड़ेगा। और भक्ति अवलंबन करने से भगवान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रभुपाद बताया जे इस चैत्य चैतन्य तो हम लोग का समझ में आया नहीं आए, बार बार इसको पठन पाठन श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। करने से क्या होगा, ये चैतन्यों का लीला का कृपा से हमारा हृदय में अपने आप कृष्ण प्रेम स्फुरित हो जाएगा। और कृष्ण को राधा रानी अन्य गोपियों का भगवान का महालीला को हम लोग समझ में आएगा। ये बहुत आसान तरीका है। जब प्रभु बताते हैं जी सबको परामर्श दिए जाते हैं जी इसका पूरा लाभ उठा, बार बार इसको श्रवण करता रहे, श्रवण करने से हम लोग का धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते कोई भी चीज एक बार पढ़ते हो समझ में नहीं आ रहे इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं है। बिंदु चंद्र महाराज बताते हैं शास्त्र इतना आसान नहीं है समझना, इसको बार बार आप इसको सोचते रहिए, मंथन करते रहिए, ताहले क्या होगा, आप जैसे समुद्र मंथन चल रहा है भागवत में, मंथन करते करते धीरे धीरे आपका असल तत्व अमृत निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग भागवत शास्त्र जब हम लोग बार बार चिंतन करेंगे मनन करेंगे तब हम लोग का असली चीज अवश्य निकाल के आ जाएगा। जैसे मैं थोड़े पहले पढ़ा था जे साके सिंधु बानेंदो, ये सिंधु सिंधु अग्नि बानेंदो, इसका अर्थ आधा लोग का समझ में आया नहीं, ये कैसे 1537 हुआ, ये इसको भी मेरे को समझने के लिए 6-7 दिन लग गया, क्योंकि सिंधु अग्नि बानेंदो कितना कठिन है। आप लोग इसको ये चैतन्य का बिल्कुल लास्ट श्लोक है, आप लोग घर में जाकर देखिएगा, बिल्कुल चैतन्य तो अंतलीला 20 अध्याय बिल्कुल लास्ट श्लोक 157 नंबर श्लोक। इसलिए हम लोग शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, हम लोग को उसको बार बार मनन करना पड़ेगा, करने से शास्त्र का कृपा से हम लोग को इसको समझ में आ जाएगा। इसलिए हम लोग धीरज रखना पड़ेगा, धीरज ही मेन होता है। इसलिए बिंदु चंद्र महाराज का मैंने कृपा से मैं भी ऐसे ही चेष्टा करता हूँ बार बार इसको समझने के लिए। इसलिए हम लोग भी ऐसे ही बार बार इसको पढ़िए, बार बार मंथन कीजिए, करने से अवश्य हम शास्त्रों को समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा, सबका आ रहा है, हम लोग क्यों नहीं आएगा, मैंने भागवत का भक्त का कृपा से हो जाएगा सन्ने से। ताले हम लोग का बार बार चैतन्य तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, होने से हम लोग क्या है आसानी से जो हम लोग को जो मूल विषय कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री प्रभुपाद की, चैतन्य चैतन्य की, निताई गौर नाथ मनंदे हरि हरि बोल।